तब अरमान ने एकदम से कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं किसी के बारे में भी नहीं जानना चाहता हूँ। इतना कहकर अरमान तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दादाजी की ओर देखकर उसने कहा, अच्छा दादाजी, मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, और वो बाहर दरवाजे की ओर चल दिया। देव भी ठीक उसके पीछे पीछे चलने लगा। दादाजी सोचने लगे, अरे यार, मैं भी इस खड़ूस सिंघानिया से ऐसी कैसी उम्मीद कर सकता हूँ कि ये मुझसे सीधे सीधे अपनी पत्नी आस्था के बारे में पूछेगा, जबकि मुझे पता है कि इसका अहंकार इतना बड़ा है कि ये कभी भी आस्था के बारे में नहीं पूछेगा। तब दादाजी ने अरमान को जाता हुआ देखकर शरारती अंदाज में कहा, अरे बेटा रुको, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, अब आगे। अरमान ने ये बात सुनते ही वहीं रुक गया और दूसरी तरफ मुंह करके उसने कहा, बोलिए दादाजी, क्या काम है आपको, इस वक्त मुझे लेट हो रहा है। तब दादाजी ने कहा, अरे बेटा तू एक काम करना, अगर तेरे पास समय है तो तू हॉस्पिटल चल जाना। दादाजी के ये कहते ही अरमान असमंजस में पड़ गया। दादाजी की ओर पलटकर उसने कहा, क्या बात है दादाजी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल क्यों जाना चाहते हैं। तब दादाजी ने कहा, बेटा मैंने आकाश और आस्था को हॉस्पिटल भेजा है, आस्था की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दादाजी की ये बात सुनकर अरमान भ्रमित हो गया और सोचने लगा, इस आफत ने अब क्या नई मुसीबत खड़ी कर दी है, कहीं उसने फिर से खुद को कहीं लॉक तो नहीं कर लिया, या कुछ और हुआ तो नहीं। ये सब सोचते हुए अरमान पूरी तरह से चिढ़ गया था। कहीं ये आफत अगर वीर रायचंद से मिली हुई होगी तो कहीं आकाश की जान को खतरा तो नहीं है, कहीं आकाश उसे लीड न दे दे। इस वक्त अरमान के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने फटाफट से देव की ओर देखा और कहा, फटाफट से गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल की ओर चलो। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरमान के दिमाग में क्या चल रहा है। एक पल पहले जब वीर रायचंद आस्था के बारे में गलत बातें कर रहा था, उसकी जान लेने के बजाय अरमान ने उसे जाने दिया था, उसके बाद वो शांत तरीके से बैठ गया था, और अब जैसे ही दादाजी ने कहा कि आस्था हॉस्पिटल में है, अरमान इतनी जल्दी हॉस्पिटल क्यों जाना चाहता है। देव अरमान के व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। अरमान की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने जल्दी ही गाड़ी तैयार कर दी और अरमान सिंघानिया हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी ओर आकाश आस्था को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था, लेकिन डॉक्टर रश्मि से मिलने में वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि पिछली बार वो गुस्से में डॉक्टर रश्मि को किस कर चुका था और उसके बाद रश्मि ने जिस तरह से उससे फ्लर्ट किया था उसका सामना करने में उसे शर्मा रही थी। वहीं आस्था को भी आकाश के साथ जाने में थोड़ा असहज लग रहा था। वो सोच रही थी कि आकाश अगर उसके हाथों के निशान देखेगा तो उसके बारे में क्या सोचेगा, इसलिए वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश ने बताया कि उसका इलाज डॉक्टर रश्मि करेंगी, आस्था को थोड़ी राहत मिली। रश्मि से पहली मुलाकात में उसे अपनी सी लग रही थी और उसे बड़ी बहन जैसा एहसास हुआ था, इसलिए आस्था के मन में थोड़ा सुकून था और उसने कहा, आकाश भैया, आकाश भैया, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद आस्था ने बार बार आकाश को आकाश भैया कहकर पुकारा और कहा कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है। एक पल के लिए आकाश हैरान हो गया और सोचने लगा कि अगर आस्था ने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब वो दे नहीं पाया तो वो अपनी नज़रों में गिर जाएगा, क्योंकि वो आस्था से झूठ नहीं बोलना चाहता था, वो आस्था को सच सच बताना चाहता था। कहीं ना कहीं आकाश डर रहा था, कहीं आस्था अरमान के बारे में उसे कुछ पूछ ले। लेकिन उसने जल्दी ही आस्था से कहा, हाँ हाँ आस्था, बोलो क्या सवाल है तुम्हारा। तब आस्था ने कहा, क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। आस्था के ये कहते ही आकाश ने कंफ्यूज होकर उसकी ओर देखा और बोला, कैसी मदद चाहिए तुम्हें, क्या हुआ है मुझे बताओ। तब आस्था बोली, हम डॉक्टर रश्मि का फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं, क्या आप हमें उनका फ़ोन नंबर दिलाने में मदद कर सकते हो। वो क्या है ना आकाश भैया, हमें वो पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी हैं और कुछ बातें हैं जो हम उनसे करना चाहते हैं, क्या आप हमारी इस मामले में मदद करोगे, क्योंकि अगर हम सीधे उनसे नंबर मांगेंगे तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। लेकिन रश्मि जी ने बताया था कि वो तो आप सबको अच्छी तरह से जानती हैं, तो आप उनका नंबर आसानी से ले सकते हैं। आस्था के ये कहते ही आकाश पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। हालांकि रश्मि का नंबर लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो इस तरह से रश्मि का नंबर कैसे मांग सकता था और ना जाने वो बेवकूफ़ रश्मि उसके बारे में क्या क्या सोचेगी। आकाश ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रश्मि उसमें कितनी ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी, और अगर उसने सामने से रश्मि का नंबर मांगा तो रश्मि तो बहुत खुश हो जाएगी और ना जाने नंबर मांगने पर वो क्या क्या बकवास बातें सोचेगी। आकाश रश्मि को लेकर अपनी सोच में खोया हुआ था। तभी आस्था ने आकाश से कहा, क्या बात है आकाश भैया, क्या हमने कुछ गलत कह दिया है क्या, आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। तभी आकाश ने आस्था की मासूम सी शक्ल देखकर उसे मना नहीं कर पाया और उससे बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर रश्मि का नंबर लेने की, अब खुश। अभी फिलहाल हम चलते हैं, डॉक्टर रश्मि इस वक्त अपने केबिन में है, हमें वहीं जाकर उनसे मिलना होगा।
आकाश के ये कहते ही आस्था मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी आकाश के साथ चलने लगी और मन में सोच रही थी कि अगर डॉक्टर रश्मि का नंबर उसे मिल जाता है तो वो उससे दोस्ती कर लेगी और फिर धीरे धीरे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो रश्मि उसे बता देगी। आस्था सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर वहीं अरमान ये सोच रहा था कि कहीं आस्था वीर रायचंद को आकाश के बारे में ना बता दे और आकाश की जान को खतरा ना हो। वीर रायचंद ने जब आस्था के बारे में ऑफिस में गलत बातें बोली थी उस वक्त उसका खून खौल उठा था और शायद वो उस वक्त उसकी जान भी ले लेता, लेकिन अभी तक वो आस्था की पृष्ठभूमि नहीं समझ पाया था कि आस्था अचानक से उसकी जिंदगी में कैसे आ सकती है। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, पूरा देश उसके गुस्से के बारे में जानता है, उसके साथ पंगा लेने वालों के साथ क्या होता है ये भी सब जानते हैं, तो फिर आस्था बिना कुछ सोचे समझे उसकी जिंदगी में कैसे आ गई है। और ये बात तो वीर रायचंद ने खुद कबूल की थी कि उसने ही प्रियंका के प्रेमी को अगवा करके उसे शादी के मंडप से भागने पर मजबूर किया था। इसका मतलब साफ है कि आस्था को भी उसने ही उसकी जिंदगी में घुसाया था और आस्था के बारे में खुद गलत बातें बोलकर वो अरमान को उकसाना चाहता है ताकि अरमान गुस्से में कुछ गलती करे और फिर वीर रायचंद उसका फायदा उठाए। अरमान के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी और वो आस्था को पूरी तरह से मुजरिम समझ रहा था, लेकिन चूंकि आस्था का नाम अरमान के साथ जुड़ चुका था इसलिए वो उसे अपनी चीज समझ रहा था और मन में सोच रहा था कि अगर वीर रायचंद ने आस्था को उसकी जिंदगी में घुसाया है तो वो आस्था को अपने हाथों से बहुत ही भयानक और दर्दनाक मौत देगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकेगा। तभी अरमान ने कार की पिछली सीट पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई कुछ ही देर में उसे आकाश दिखाई देने लगा। आकाश खून से लथपथ सड़क पर दौड़ रहा था और आस्था जोरों से हंसकर तालियां बजा रही थी और वीर रायचंद ने अपना हाथ आस्था के कंधे पर रखा हुआ था और उसे बुरी तरह से छू रहा था। अरमान ने यह सपना देखते ही गुस्से से अपनी आंखें खोल ली। उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था वही सपने के तौर पर उसे दिखाई दे गया था। अब आस्था पर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वो जल्द से जल्द आस्था से मिलना चाहता था। तभी उसे ड्राइवर की आवाज आई, सर हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं।
तब अरमान जल्दी से कार से बाहर निकला और हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया। उसने अपने सभी गार्ड्स को आदेश दिया कि चारों तरफ फैल जाओ, जो भी वीर रायचंद का आदमी दिखे उसे तुरंत बताएं। अरमान का आदेश मिलते ही सभी गार्ड्स हॉस्पिटल में फैल गए और अरमान लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ डॉक्टर रश्मि के केबिन की ओर जाने लगा। वहीं रश्मि ने जैसे ही आकाश और आस्था को साथ में देखा तो वो मुस्कुराने लगी और उसने जल्दी से आगे बढ़कर आस्था को गले लगा लिया। आस्था को गले लगाते हुए वो मुस्कुराकर आकाश को देख रही थी, लेकिन आकाश जानबूझकर इधर उधर देख रहा था। उसने एक बार भी रश्मि की ओर नहीं देखा। रश्मि ने हल्के हरे रंग का सूट पहना था और उसके साथ सफ़ेद रंग का दुपट्टा लिया था। उसके बाल खुले हुए थे जिसमें वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आकाश ने उसे चोरी चोरी से निहारा भी था, लेकिन अपने गुस्से की वजह से वो उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। तभी रश्मि बोली, मुझे दादाजी का कॉल आया था और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, आओ यहाँ बैठो और बताओ क्या समस्या है। आस्था ने एक नज़र आकाश की ओर देखा। रश्मि समझ गई कि शायद आस्था आकाश के सामने अपनी समस्या पर चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए रश्मि ने प्यार से आकाश की ओर देखते हुए कहा, आकाश मुझे लगता है कि आपको थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना चाहिए। रश्मि के ये कहते ही आकाश ने केवल उसकी ओर एक नज़र उठाई, लेकिन रश्मि ने तुरंत शरारत से अपनी एक आंख आकाश की ओर झपका दी। आकाश ने ये देखकर कि रश्मि ने उसे आंख मारी है वो अंदर ही अंदर घबरा गया और सोचने लगा, ये लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है, लड़की होकर आंख मारती है। रश्मि के आंख मारने के कारण आकाश के गाल लाल हो गए थे। उसे बहुत शर्म सी महसूस हो रही थी और आकाश को इस तरह से शर्माता हुआ देखकर रश्मि हंस पड़ी। रश्मि को हंसता हुआ देखकर आस्था हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उसने आकाश को शर्माते हुए और रश्मि को हंसते हुए देखा। एक पल को आस्था को एहसास हुआ कि इन दोनों का कुछ न कुछ रिश्ता जरूर है, लेकिन आस्था इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी। वो पहले सारी बातों की अच्छी तरह से जांच करना चाहती थी। रश्मि ने ये महसूस किया कि आस्था भ्रम में उसकी ओर देख रही है, तो उसने तुरंत हंसना बंद कर दिया। तब तक आकाश भी जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया था। तब रश्मि बोलने लगी, मुझे बहुत दुख है मिसेस सिंघानिया। वो बस, रश्मि ये बोलते हुए शर्मा रही थी। उसने आकाश को आंख मारी थी, लेकिन उसे भी अब थोड़ी शर्मा रही थी क्योंकि उसने ऐसी हरकत पहली बार की थी, लेकिन आकाश को इस तरह से छेड़ने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तब आस्था ने जल्दी से रश्मि की ओर देखते हुए कहा, रश्मि जी क्या आप आकाश भैया को पसंद करती हैं? आस्था ने बड़ी ही मासूमियत से रश्मि से सीधे सीधे ये सवाल किया। रश्मि मानो किसी का सहारा ढूंढ ही रही थी और उसने तुरंत कहना शुरू कर दिया, पसंद करती हूँ, अरे मैं मरती हूँ उस पर, मरती हूँ मैं, और आज से नहीं 5 सालों से मरती हूँ उस पर, लेकिन वो मजाल कि मेरी ओर आंख उठाकर भी देख ले, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे देखता तक नहीं है। 2 साल पहले तो मैंने खुद सामने से इसे प्रपोज किया था, उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया, असल में उसने मेरा अपमान किया।
डॉक्टर रश्मि की बात सुनकर आस्था का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। वो बिना पलक झपकाए लगातार डॉक्टर रश्मि की ओर देख रही थी। तभी अचानक,